ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಭೀ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೈ ಯಥಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೋ ಚಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಹೋ, ಸಾಧನಾ ಶಬ್ದ ಕೋಯಿ ನಯಾ ನಹೀ ಹೈ. ಹೈ ನಯಾ ಶಬ್ದ. ಹಮ್ ಜೋ ಕುಚ್ ಭೀ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಸಾಧನಾ ಕಾ ಹೀ ಹಿಸ್ಸಾ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಸಾಧನಾ? ಸಾಧನಾ ಮಾನಾ ಅಪ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ ಲೇನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಜೋ ಕುಚ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಸಾಧನಾ. ಔರ್ ಜೋ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಸಾಧಕ್. और जिन उपकरणों का इस्तेमाल करता है इस साधना के लिए उसको कहते हैं साधन. साधक, साधन, साधना, साध्य. तो साधना अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, माना साधना हम कर रहे हैं. लेकिन हमारी साधना यथार्थ हो. जैसे आज का वरदान किसको याद है? क्या था वरदान आज का? आज का वरदान उमंग सा का था, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान बनो. जिसके अंदर बाबा ने कहा कि जैसे बाप दादा आप मालिकों का आज्ञाकारी बनता है और आपकी आज्ञा का पालन करके आपसे मिलने के लिए आता है. हा? जी हजूर का पाठ पढ़ता है और आ जाता है. तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है? फिर बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि बाप दादा क्या कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, ऐसे अब आपको क्या करना है? तो कहा अमृत वेले से लेकर समाप्ति, दिन के समाप्ति तक आपका धर्म, आपका कर्म कैसा हो? बाप समान. धर्म और कर्म में बाप के समान बनो. अगर ऐसा करते हैं तो फिर मिलन के झूले में झूलने का आनंद, झूलते ही रहेंगे मिलन के झूले में. और इतना ही नहीं, क्योंकि जब हम झूला झूलते हैं ना, खुद ही झूलते हैं तो इतना मजा नहीं आता है, क्योंकि थोड़ी देर में रुक जाता है ना, फिर लगता है कोई धक्का देने वाला हो, झुलाने वाला हो, क्योंकि हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं और झुला रहे हैं, फिर थोड़ी देर में उसको मतलब फिर रुक जाते हैं, क्योंकि पहले ताकत लगा दी तो झूल रहा है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर मेहनत लगानी पड़ती, तो इसलिए लगता है कोई झुलाने वाला होना चाहिए, है ना. तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि तुम मिलन के झूले में झूलेंगे और उसको कौन झुलाता रहेगा? प्रकृति और माया, क्योंकि झुलाने वाला तो कम पद वाला ही होगा ना, वो दासी बन जाएंगे और वो आपके झूले को झुलाते रहेंगे. और जो खजाने बाबा से मिलते वो खजाने आपके झूले की सजावट करेंगे, तो बड़ा सुंदर सा लगेगा. बहुत सुंदर झूले में झूलने का मजा अलग है ना. हर प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ हो अगर झूला, उसमें झूलने का आनंद और एक सामान्य सा हो, है अंतर? नहीं है अंतर. तो जब कहा कि अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक बाप समान धर्म कर्म हो, माना फिर से ये बात आती है यथार्थ हो, है ना, एक्यूरेसी हो, तब कहीं जाकर हम मिलन का झूले का आनंद ले सकते हैं. और एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने साधना शब्द की मीनिंग दी है, यथार्थ साधना की. और उसमें कहा बाबा ने, साधना अर्थात याद, उस एक की याद, लेकिन सिर्फ याद नहीं, शक्तिशाली याद। इतना ही नहीं, उस एक के साथ निरंतर दिल का संबंध भी हो। साधना की परिभाषा दी, याद उस एक की, पर कैसी शक्तिशाली, उसके साथ संबंध पर कैसा दिल का, और वो भी कैसे निरंतर। इसको कहते हैं साधना। और फिर आगे कहा बाबा ने कि जैसे योग करने बैठे तो शरीर को बिठा दिया, इसको कहते हैं हम योग में बैठे, यही करते हम। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ शरीर को नहीं बिठाना है, इसके साथ और को भी बिठाना है, और वो कौन है, मन, बुद्धि, पहला लेसन पढ़ते हैं तो मन बुद्धि संस्कार रटा हुआ है ना, और शरीर तो मालूम ही है भाई, शरीर से अलग आत्मा है और आत्मा की बात चल रही है। तो योग जब करते तो शरीर को तो बिठा देते हैं, तो और किसको बिठाना है, तो बाबा ने कहा मन को भी, बुद्धि को भी और दिल को भी। और बिठाना मतलब जैसे बिठाते, मतलब उसको स्थिर कर देते हैं, हम इधर उधर जा रहे माना स्थिरता नहीं है, लेकिन एक जगह बिठा दिया माना स्थिरता है। तो ऐसे ही मन, बुद्धि और दिल भी स्थिर रहे। ऐसा ना हो कि शरीर एक जगह बैठा है, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, दिल कहीं और, इसको यथार्थ साधना नहीं कहते हैं। लेकिन जब चारों ही एक बाप के साथ साथ हो, उसको कहते हैं यथार्थ साधना। अब बात आती है कि ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई, शरीर, मन, बुद्धि, दिल, यह है साधन। हमने इसलिए पहले बताया साधक, साधन, साधना, साध्य, है ना, साधन चाहिए ना। तो कौन से साधन है हमको, शरीर इस रंगमंच पर कार्य करने के लिए हमें शरीर मिला हुआ है, इसके पास इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां कहते हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, बाह्यकरण भी कहते हैं इनको, बहिर्करण। और करण माना क्या होता है, अगर स्कूल में जो पढ़े होंगे ग्रामर जब सीखा था, कर्म ने कर्ता को करण से याद किया था ना ऐसा, तो क्या होता है करण, उपकरण, साधन, या कहे औजार, औजार, टूल। भाई आंख उपकरण है देखने के लिए, कान उपकरण है सुनने के लिए, उपकरण है नहीं। एक कारपेंट्री को आरी किस लिए चाहिए होती है, लकड़ी को काटने के लिए, तो आरी उसका क्या है, बिना आरी के वो काट सकेगा, नहीं काट सकेगा। तो बिना आग के हम देख सकेंगे, तो ये उपकरण है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर और एक शरीर है, कौन सा शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर को बिठा दिया माना सभी कर्मेंद्रियों को भी बिठा दिया, उपकरण को बिठा देना माना स्थिर करना, और स्थिर करने का मतलब किचन में चटनी बनानी थी तो मैंने मिक्सी उठाई, उसको प्लग इन किया, बटन चालू किया, करंट उसमें गया, इधर का बटन घुमाया, डुर घूमने लगा और चटनी बन गई। पत्ते डाले थे पुदीना के, धनिया के, और वो क्या हो गए, पिस गए। चटनी बनाने का काम मेरा पूरा हो गया। क्या करूंगी फिर मैं उस उपकरण को रख दूंगी ना, प्लग इन किया हुआ था निकाल दूंगी, बटन बंद कर दूंगी, ये हो गया, मैंने उसको वापस स्थिर कर दिया। स्थिर पड़ी थी, यूज में किया तो उसकी स्थिरता चली गई, वापस काम हो गया, वापस स्थिर कर दिया। तो जैसे कहा कि यथार्थ साधना माना शरीर भी स्थिर रहे, इसका मतलब हर इंद्रिय से करंट को स्विच ऑफ कर देना, आत्मा का ध्यान वहां से ऊपर उठा लेना। यही तो कहते हैं जब नए नए को कमेंट्री कराते हैं पहले दिन, सब तरफ से ध्यान हटाकर, ये हमारा पहला सेंटेंस हमेशा यही होता है, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को कहां केंद्रित करें, मतलब इधर करंट देना क्या कर दो। तो ये उपकरण है, ऐसे ही मन बुद्धि और दिल भी क्या है, उपकरण है। तो उनको भी स्थिर करना है। तो जैसे इस उपकरण को स्थिर किया, माना आंख ने इस दुनिया का देखना बंद किया, कान ने इस दुनिया का सुनना बंद किया, तो ही कहेंगे स्थिर ना। अगर सुन रहा है तो स्थिर कहेंगे क्या? देख रहा है, आंख देख रही है, तो स्थिर कहेंगे उसको? नहीं। और इसीलिए कहा जाता है सब तरफ से ध्यान हटाकर यहां पे केंद्रित करें, और कहीं ध्यान नहीं हो। तो मन को किस प्रकार का उपकरण है, जो अंदर में शरीर है सूक्ष्म, उसके पास भी उपकरण है, क्योंकि वो शरीर भीतर में है, अंतर में है, उसके साधन को अंतकरण बोलते हैं। ये बाहर दिखता है तो इसके साधनों को, इसके उपकरणों को बहिर्करण बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं दिखता है, भीतर में है, तो उसके पास भी करण है, उसके पास भी उपकरण है, तो उसको अंतकरण बोलते हैं। और वो अंतकरण क्या होता है, तो मन बुद्धि, हाँ बोलो बोलो, दिल, और कहते अंतकरण चतुष्टय, सुना है ये शब्द? जैसे इसको हम पंच कर्मेंद्रिया बोल के हमें पता होता है कि पांच कर्मेंद्रिया, ऐसे अंतकरण चतुष्टय बोला जाता है, अर्थात वहां पे चार की बात की जा रही है, चार सूक्ष्म इंद्रियों की बात की जा रही है। तो कौन कौन सी है, एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त, चौथा है अहंकार। ये चार अंतर के करण है, अंतकरण। अब इनको भी स्थिर करना है। मन सोच विचार में लगा है, मन स्थिर नहीं है। बुद्धि संशय और निश्चय में लगी हुई है, संदेह में लगी हुई है, तर्क में लगी हुई है, मतलब स्थिर नहीं है। चित्त के अंदर एक के बाद एक वृत्तियां उठ रही है, मतलब स्थिर नहीं है। अहम में कुछ न कुछ मैंपन आ रहा है, मतलब स्थिर नहीं है। और अगर ये स्थिर नहीं है तो फिर बाबा के अनुसार यथार्थ साधना नहीं है। बाबा की परिभाषा अव्यक्त मुरली का यह पॉइंट है। अब यहां पे एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि दिल तो आया ही नहीं संतकरण चतुष्टय में, बाबा के महावाक्य में तो चित्त नहीं था, बाबा के महावाक्य में तो दिल था। बाबा के महावाक्य में तो अहंकार भी नहीं था, है ना। तो ये दिल क्या होता है फिर? तभी सोचा बाबा कहते साफ दिल, स्वच्छ दिल। क्या होता है दिल? कभी आपने सुना बुद्धि तख्त नशीन? नहीं। क्या बोला है बाबा ने? मतलब दिल बिठाने का स्थान है। दिल क्या है? बिठाने का स्थान है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तर्क करने का। बुद्धि को ज्ञान का मंदिर कहते हैं और दिल को, हृदय को कहते हैं प्रेम का मंदिर। वो प्रेम का मंदिर है, वो ज्ञान का मंदिर है। अब दिल भी स्थिर रहे, बुद्धि भी स्थिर रहे, मतलब तर्क भी शांत रहे और दिल में क्या उठता है? बुद्धि में तर्क उठते हैं, दिल में क्या उठता है? दिल में भावनाएं उठती है, तरंगे उठती है। अब वो उठना भी शांत हो जाए तब कहेंगे दिल स्थिर। बुद्धि में तर्क उठना भी शांत हो जाए कहेंगे बुद्धि स्थिर। मन में विचार उठना शांत हो जाए उसको कहेंगे मन स्थिर। और शरीर के भी उपकरण कार्य करना बंद कर दे, हिलना डुलना बंद कर दे, उसको कहेंगे स्थिर। अब हम अपने आप से पूछें, जब हम योग में बैठते हैं हमारी कौन सी प्रकार की स्थिरता होती है? यथार्थ साधना, यथार्थ याद, शक्तिशाली याद। बाबा की परिभाषा कहती है चारों शांत हो, स्थिर हो। तो हम जब याद में बैठते हैं हमारा क्या होता है? होते हैं चारों शांत? पहली बात, पहला ही उपकरण शांत नहीं रहता। तो इसका मतलब अगर हमें यथार्थ साधना करनी है, हमारी साधना यथार्थ हो, अर्थात जब हम उसे याद करें वो शक्तिशाली हो, उसके साथ हमारा संबंध दिल का हो और निरंतर हो, उसके लिए चारों स्थिर होना चाहिए। मतलब पहले उपाय तो इन चारों के लिए करना पड़ेगा। मैं उससे कनेक्ट हूं, उससे पहले इनके लिए उपाय करने पड़ेंगे ना मुझे। भाई योग में भी बैठना है मुझे, तो बैठने का स्थान ढूंढा जाता है ना पहले। वे कहां करेंगे योग बैठ के? फिर अरे यहां बिछायत कहां, या तो कंकड़ लगे पड़े हैं। मतलब पहले उसका प्रबंध करना होगा। तो अगर मेरा शरीर भी स्थिर होना चाहिए यथार्थ याद के लिए, मतलब शरीर को के प्रति क्या ध्यान देना पड़ेगा? उसकी प्रॉपर नींद हुई रहनी चाहिए। इसीलिए हमने आपको पहले दिन कहा था जिम्मेवारियों से मुक्त हो, इसलिए जितना जल्दी उठ सको उठ सकते हो, पर हम टाइम में नहीं बांधेंगे, क्योंकि हर एक के शरीर की आयु अपनी है, स्वास्थ्य अपना है, सामर्थ्य अपना है, एडजस्टमेंट में समय अपना लगता है। और हम जबरदस्ती सबको एक बात कह दें तो फिर भले उठकर तो आ जाएंगे लेकिन जुट के ही मारेंगे, है ना। इसलिए कहा बैलेंस में चलो। इतना भी जल्दी हम नहीं उठ जाएं कि जल्दी तो योग कर लिया, लेकिन खास बाबा ने जो टाइम मुकरर किया है संगठित अमृत वेले योग का, उस समय फिर हम कहेंगे हमने तो योग कर लिया ना, अभी सो गए तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु बाबा ने खास कहा है कि ये टाइम मैंने खास बच्चों के लिए रखा है, और अगर इस समय वरदानों से झोली नहीं भरी फिर तो टाइम किसका हो जाएगा? भक्तों का हो जाएगा। होता है ना, किसी से अपॉइंटमेंट ली हुई होती है हमारी, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, हमको लगता है हम ही अकेले जो अपॉइंटमेंट वाले हैं, पर उनके पास तो अपॉइंटमेंट की लाइन है। अब आप नहीं आए तो दूसरे को ले लिया, अब करो इंतजार, होगा या नहीं होगा ऐसे। तो बैलेंस, तो शरीर भी स्थिर रह सके, इसको प्रॉपर नींद हो, इसको प्रॉपर भोजन मिले, और प्रॉपर भोजन का मतलब भूख से कम भी जा, एकदम कम न खाए और ज्यादा भी नहीं खाए। कम भी खाया हुआ रहेगा तो भीतर में बेचैनी महसूस होगी, है ना, अंदर में कुछ कुछ हो रहा है, और ज्यादा खाया होगा तो होता है नहीं होता है। तो सबका बैलेंस चाहिए, मेरे शरीर को क्या सूट होता है क्या सूट नहीं होता है इसका भी ज्ञान हमें रखना है, वरना जो सूट नहीं हो रही चीज मैंने फिर भी खा ली, यहां पर तूफान, शांति भंग पूरी, बेचैनी, निकल नहीं रहा लेकिन हो रहा है, और वो जब तक निकल नहीं जाता तब तक बेचैनी, और एक बार निकल गया भी अच्छा लग रहा है, हालांकि उसमें वीकनेस भी आ गई, परंतु जब तक था तब तक बेचैनी मची हुई थी, अस्थिरता मची हुई थी, चंचलता मची हुई थी, लेकिन एक बार वो निकल गया तो अब शांत महसूस हो रहा है, चैन महसूस हो रहा है। तो शरीर स्थिर रहे इसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमारे शरीर स्थिर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये शरीर भी धूल पसीने से अगर गंदा होगा तब भी वो स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए देखो, जब सुबह स्नान आदि करके हम अपने कारोबार में लगते हैं और उस दौरान फिर से धूल पसीने से हम लथपथ होते रहते हैं, और शाम को आते ही पहला काम घर में क्या करते हैं, पहले तो मुझे स्नान कर लेने दो, क्योंकि अगर स्नान नहीं किया, वो धूल पसीना लगा हुआ है तो बीच बीच में कभी इधर खुजली हो रही, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, क्योंकि वो धूल पसीना जो है, मतलब जो अशुद्धि है, वो आपको चैन प्रदान नहीं करती है। यहां तक कि आप भोजन खा लो, भोजन खाने के लिए दांत चाहिए चबाने के लिए, लेकिन भोजन करके हो गया, दांत में कुछ फंस गया तो क्या होता है, बार बार जीभ उधर जाएगी, मतलब बेचैनी है ना, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है ना। जिस चीज का जहां स्थान हो वहीं अगर है तो शांति है, नहीं तो शांति नहीं है। तो ये है शरीर की स्थिरता के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना होगा। हम कहते हैं, कई बार सोचते हैं, भगवान ने तो हमको उपवास आदि से सब छुड़ा दिया, भक्ति में सब तो इसीलिए हमने किया था कि भगवान मिले, और अब तो भगवान मिल गए, भक्ति का फल मिल गया, वो सब क्यों करना है? बेशक नहीं करना है, परंतु शरीर से ही तो साधना करनी है, शरीर के भी तो अपने नियम हैं। हमको सतयुग में क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सा सौभाग्य मिलने वाला है? तंदुरुस्त शरीर, सौभाग्य शरीर का, तन का सौभाग्य, जिसमें तीनों बातें आती है। शरीर के सौभाग्य में क्या क्या बातें, तन का सुख क्या क्या होता है, निरोगी काया और क्या हो, तन कैसा चाहिए होता है, तन की फिटनेस भी चाहिए होती है। हाँ, कई बार लोग होते हैं मोटे, कहते मुझे कुछ भी नहीं है, पर मोटापा है तो फिटनेस नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन समयांतर में यही मोटापा रोगों का घर बनेगा। तो ये शुरुआत है अभी, इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन रोग की जड़ है जरूर। रोग नहीं है पर रोग की जड़ तो है, समझ में आ रही बातें? तो फिटनेस भी चाहिए, जिसको सुडौलता बोलते हैं, और सुंदरता। अब सुंदरता माना कौन सी सुंदरता, मिस वर्ल्ड बनने वाली नहीं, ठीक ठाक रखते हैं ना, अपने फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, हाँ, अपने बालों की स्टाइल मेरे चेहरे पे कैसे सूट होती है उस प्रकार से रखते हैं, बालों को संवार के रखते हैं, साफ खाया है तो कुछ लग गया है तो, ये इसको सुंदरता कह रहे हैं हम, नहीं तो चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर में। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हैं, तो जो जो भाग्य मुझे सतयुग में चाहिए उसका ज्ञान मुझे या नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए या नहीं चाहिए? तो इन बातों पर हमें अटेंशन देना। अगर हम इनको ऐसे ही निग्लेक्ट करते रहेंगे, बस याद 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 करते रहेंगे, लेकिन याद याद के लिए इसको निग्लेक्ट तो किया पर याद उतनी यथार्थ बन कहां रही है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। बाबा की परिभाषा है यथार्थ याद माना क्या, शरीर स्थिर रहे, शांत रहे। आज अगर बुखार होता है किस लिए होता है बुखार, तो कहते हैं बैक्टीरिया वायरस शरीर में चला गया। अब शरीर के पास एक प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग के अनुसार उसको पता है ये बैक्टीरिया ये वायरस मेरे को नुकसान करने वाला है, और इसके लिए इसको खदेड़ने की कोशिश में लगता है। अब खदेड़ूं तो कैसे खदेड़ूं इनको, तो पता है ये हाई टेम्परेचर पे जीवित नहीं रह सकते, तो ताप को बढ़ा देता है। शरीर क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि इस बढ़े हुए टेम्परेचर में इसका जीना क्या हो जाए, हराम हो जाए, और इस प्रकार से अपनी सेफ्टी का इंतजाम करता है। तो शरीर को भी प्रोग्रामिंग मिली हुई है, कुदरत ने ऐसे ही नहीं बनाया है। तो ऐसे ही मन की स्थिरता, तो जैसे शरीर को ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग मिली हुई है, बैक्टीरिया आया वायरस आया तो अपने हिसाब से, ऐसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी शरीर को प्रोग्रामिंग है। तभी तो कुछ ऐसी चीजें खा लेते फेंक देता है, वो फेंकता है नहीं, तो प्रोग्रामिंग है सारी उसके पास। तो हर एक को अपने अपने बॉडी के अनुसार समझना होता है, और इस अनुसार चलेंगे तो शरीर की स्थिरता शांति हमारी बनेगी। फिर दूसरा मन की स्थिरता। मन की स्थिरता माना क्या, मन कब चंचल होता है, इन उपकरणों से जब कुछ ग्रहण करता है अंदर जाता है, कौन से उपकरणों से, इंद्रिय रूपी उपकरणों से, आंखों से कान से नाक से, तो वहां से आने वाला क्या ग्रहण कर रहा है। अब यहां पे दो बातें आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा दिल, तो मैंने मन बुद्धि संस्कार जब बोलते हैं तो दिल उसमें तो आया नहीं, तो फिर दिल क्या है? तो दिल कहां पर होता है? कई बार आपने सुना होगा चित्त शुद्धि, सुना है शब्द, और कई बार सुना होगा हृदय शुद्धि, सुने ये शब्द, और कई बार चित्त शुद्धि माना हृदय शुद्धि मानी जाती है, अर्थात चित्त को ही हृदय माना गया है। पर फिर भी थोड़ा बहुत अंतर क्या है? तो जैसे यहां पे शरीर में हृदय को क्या कहा जाता है, वो ठीक है, जैसे नागपुर हम कहते हैं नागपुर देश की हृदय स्थली है, इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट, हृदय माना सेंट्रल पॉइंट। तो अगर हमने कहा कि दिल, तो ये भी सेंट्रल पॉइंट होगा। अब बाबा कहते दिल ये वाला नहीं, तो फिर कौन सा वाला दिल जो सेंट्रल पॉइंट होगा? ये वाला दिल तो शारीरिक अंग, और ये सेंट्रल पॉइंट है यहां से यहां तक, है ना? अब वो जो दिल तख्त नशीन वाला दिल है, और दिल माना ही सेंट्रल पॉइंट, तो कहां का सेंट्रल पॉइंट होगा? वो कहां का सेंट्रल पॉइंट होगा? हाँ, थोड़ा सा दिमाग चला। और इसीलिए बाबा की मुली में कई बार आता है बुद्धि से नहीं दिल से काम लो, बोलते हैं बाबा, हाँ जिगर से। अब क्या होता है उसका अर्थ? दिल से काम लो, क्या होता है उसका अर्थ? तो देखो, आत्मा और शरीर, शरीर है जड़, शरीर है जड़, और आत्मा है चैतन्य। चैतन्य और जड़ जहां मिलते हैं उस केंद्र को कहते हैं दिल। चैतन्य और जड़ जहां मिलते हैं उसको कहते हैं दिल, उसको कहते हैं हृदय। अब कहां मिलते हैं चैतन्य और दिल? माना चैतन्य और ये शरीर कहां मिलता है? तो कहा कि मन और चित, ये भी दो शब्द है ना? एक है मन और दिल, एक है मन और चित, क्योंकि कहा ना चित्त शुद्धि हृदय शुद्धि, और दोनों को एक माना जाता है। आपने एक बल्ब देखा होगा, बल्ब में अंदर में एक फिलामेंट है, स्विच ऑन करते ही फिलामेंट प्रकाशित होता है, लेकिन वो फिलामेंट चारों तरफ से कांच से कवर किया गया है। अब वो जो फिलामेंट प्रकाशित हुआ है उसका प्रकाश, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, आगे बढ़ता रहता है वो। तो जहां फिलामेंट प्रकाशित हुआ है वहां से प्रकाश आगे बढ़ रहा है, तो रास्ते में कौन आ गया? कांच आ गया। तो पहला प्रकाश किसको मिला? कांच की आंतरिक सतह को, और दूसरा कांच के बाहरी सतह को, और उसके बाद आगे वालों को। समझ में आ रही है बात? अब जो पहला प्रकाश जो मिला है, तो जो फिलामेंट से जिस प्रकार का प्रकाश निकल रहा था उस प्रकार का प्रकाश वहां भी है। समझ में आ रही है बात? क्वालिटी या प्रकाश सेम रहेगी वहां पे, लेकिन यहां से अब धूल मिट्टी चढ़ रही है, इधर से धूल मिट्टी चल रही है, तो एकदम जो सतह से चिपका हुआ प्रकाश होगा उसकी क्वालिटी और थोड़ा उससे ऊपर वाले का, उसमें धूल मिट्टी मिल गई उसकी क्वालिटी, अंतर होगा या नहीं होगा? तो हृदय वो स्थान है जो चिपक कर कांच, समझ में आई बात? और उसके बाद वाला हिस्सा चित्त, जिस चित्त पे ही सारे संस्कार जमा होते हैं। हम कहते हैं पहले दिन के लेसन में कि हम मन बुद्धि संस्कार समझाते हैं, मन से हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, बुद्धि से फिर निर्णय करते हैं, फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म में आते हैं, और जो कुछ भी कर्म करते हैं उसकी छाप आत्मा पर पड़ती है, उस छाप को ही क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। तो चित्त पर यहां बाह्य दुनिया की सब बातें जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो मन के पास पहुंचते हैं, और फिर मन के द्वारा किधर पहुंचते हैं? उसकी गहराई में, उसके भीतर में। तो मन जो शरीर के तरफ लगा हुआ है उसको मन कहा, जो इधर आत्मा की तरफ है उसको चित्त कहा, और जो एकदम चिपका हुआ है वो हृदय है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात या कोई कंफ्यूजन है? सिक्का देखा है ना, सिक्का चित्त और पट खेलते थे, तो कौन से साइड को चित्त कहते हैं? फोटो वाले साइड को चित्त कहते हैं, और दूसरे वाले साइड को पट। पर है तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू ना, ऐसे मन और चित है मन ही, समझ में आ रहा है? वो है मन ही, लेकिन उसके दो साइड हो गए ना, क्योंकि मन इसके भीतर है ना। हाँ, बाबा के पास आए तो क्या पता चला, जब अज्ञानी थे यही मैं है और यही मेरा है ना, ये मैं हूं और ये मेरा हाथ है, मैं भी यही मेरा भी यही। लेकिन बाबा के पास है तो कहा नहीं बच्चे, ये मेरा अलग है और इस मेरा को चलाने वाली मैं आत्मा अलग हूं, पता चला ना। तो ये पहले ऐसे थे, हमने ऐसा करके रख दिया था, अब बाबा ने बोला नहीं ये अलग अलग है। फिर ज्ञान में आगे बढ़े तो कहा नहीं, इसके अंदर और एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर के ही इंद्रियां हैं मन बुद्धि। तो मन इधर है, तो अब मन के जैसे सिक्के के दो पहलू है, तो मन के भी दो पहलू, क्योंकि बीच में जो रहेगा उसके दो ही पहलू आएंगे ना, एक इधर रहेगा एक इधर, होगा या नहीं होगा ऐसे? तो इधर माना एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है, तो शरीर वाला साइड जो है मन, आत्मा के साइड वाला है चित्त। लेकिन चित्त में भी जो एकदम निकट है उस प्रकाश की पहली लेयर जिस पे पड़ी है वो है हृदय। क्योंकि चित्त भी क्या है? प्रकृति का ही हिस्सा है, जड़ का ही हिस्सा है। लेकिन हमने क्या कहा, हृदय किसको कहा जाता है? जंक्शन को कहा जाता है, सेंट्रल पॉइंट को कहा जाता है। तो जहां जड़ और चैतन्य मिल रहे हैं उस जंक्शन वाले पॉइंट को हृदय कहा जाता है, और इसके आगे वो चित्त तो है ही। और यहां पे बहुत कुछ जो मन इंद्रियों से मन में आया और मन से इधर जा रहा है, सारा सारा यहां जमा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब इसका मतलब जो कहा कि मन भी स्थिर रहे, बुद्धि भी स्थिर रहे और दिल भी स्थिर रहे। तो मन और बुद्धि और चित्त स्थिर कैसे रह सकते हैं बताओ? कैसे रहेंगे? अगर अशुभ चलता रहेगा मन में, वो बताते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, बोलते फलाने व्यक्ति की कोई भी 10 कमियां मुझे बताओ फटाफट, 10 तो क्या 20 आ जाएगी। फलाने व्यक्ति की खूबियां लिखो कोई भी 5, उधर तो 10 तो क्या 20 लिख डाली थी, लेकिन खूबियां पूछी तो एक भी याद नहीं आ रही। समझ में आ रहा है ना? तो शुभ बहुत कम होता है और अशुभ बहुत होता है। जो बहुत है वही भीड़ जमा के अशांति खड़ी करता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा हमेशा अपने आप को शुद्ध संकल्प में मन को विचरण कराते रहना। और शुद्ध संकल्प में, सत्य संकल्प में माना आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। मन में सदा सत्य के संकल्प चले तो मन स्थिर रहेगा। और सत्य के संकल्प चले का मतलब है आत्मा के संकल्प चले, न कि देह के। और फिर देह के साथ देह की वस्तुएं वैभव के संपल चलते, तो यहां पे आत्मा के चले तो आत्मा के पास क्या गुण है वो वाले चले। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर ये संकल्प चलाते हैं तो मन में शांति होगी, स्थिरता होगी। और ये जो मन में होता है वही फिर जाके चित्त में जमा होता है। हाँ, चित्त वृत्ति शब्द सुना है किसी ने? मनोवृत्ति शब्द सुना है? वृत्ति शब्द सुना है? बाबा की मुरलियों में आता है ना, जो वृत्ति में होगा वो वातावरण में फैलेगा। अब फैलेगा का मतलब क्या होता है? जो वृत्ति में होगा सो वातावरण में फैलेगा। तो हाँ, व्यवहार में भी वही आएगा। तो ये कैसे होता है? तालाब में हमने एक पत्थर फेंका, तो जैसे एक पत्थर फेंकेंगे जो जल शांत था वो हलचल में आ गया, और हलचल में आते ही वो आगे आगे नहीं, वो जिसको अंग्रेजी में रिप्पल कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग, माना गोलाकार में जो बनता है ना, गोलाकार में। और वो ऐसे फैलते 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 कहाँ जाएगा? किनारे तक जाएगा, और किनारे से टकराकर वापस आएगा, फिर वापस तरंगे। फेंका तो सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन परिणाम स्वरूप कितनी सारी वृत्तियां, फिर टकराया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। ऐसे ही इंद्रियों से कुछ ग्रहण किया, मन के पास गया, माना एक पत्थर फेंका, फिर मन से तो चित्त में जाएगा ना, अंदर की ओर जाएगा ना। फिर अब चित्त में पहले का बहुत सारा स्टोरेज है, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, आस्थाएं, बिलीफ सिस्टम है। अहंकार उसी को ही कहते हैं, जो हम क्या बोलते हैं सरल करने के, जो मैं हूं नहीं फिर भी उसको मानना, ईगो, यही सरल डेफिनेशन है। तो मैं देह नहीं हूं पर मेरी मान्यता है कि मैं देह हूं, अज्ञानतावश मेरी मान्यता है, और उसी को अहंकार कहा। तो ऐसी कितनी सारी मान्यताएं हमारे भीतर, ये मेरी माँ है, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेंटर इंचार्ज हूं, मैं सीनियर हूं, मैं अनुभवी हूं, ये भी तो हमारी मान्यताएं है ना। तो यहां से कोई बात आई, अंदर गई, मान्यता रूपी किनारे से टकराएगा वो। समझ में आ रही बात? किसी ने कुछ बोला, जानता नहीं मैं कौन हूं, तो बात किससे टकराई? मेरी मान्यता से जाके टकराई ना। तो मान्यता माने अहंकार जिसको कहा, तो ये यहां पर तो तालाब में हमने कहा कि किनारे से जाके टकराएगा, और भीतर चित्त के किनारे क्या है, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, हमारी बिलीफ सिस्टम, वहां जाके टकराएगा और टकरा के प्रतिक्रिया और होगी। ऐसा ही होता है दुनिया में, कोई एक दृश्य देखा नहीं, वो अंदर गया, अंदर के किनारों से टकराया और फलस्वरूप और तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे पैदा होती चली गई, पैदा होती चली गई। और जब तरंगे हो रही है तो स्थिरता खत्म। तो ये तरंगे ना उठे उसको कहेंगे मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता। बुद्धि में तर्क वितर्क नहीं उठे उसको कहेंगे बुद्धि की स्थिरता। और इसके लिए हमेशा सत्य में रमण करना है, और इसीलिए योग करना है। माना पहली लाइन, सब तरफ से ध्यान हटाकर या भ्रुकुटी में जो आत्मा विराजमान है उस पर ध्यान को केंद्रित करें, सत्य के प्रति ध्यान को केंद्रित करेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी। सत्य के अलावा असत्य का ध्यान आया, शांति भंग हो जाएगी। तो इतना हमें शांत अपने आप को रखना है, और इतनी शांत अवस्था में रहकर उस परमात्मा से परम धाम में जाके उसके पास में उसके सानिध्य को अनुभव करना है, और तब जाकर परमात्मा हमें अपने समान बनाता है। अर्थात हमारे अंदर जो विकर्म के कारण जब हम सतयुग में आए, घर में बैठे थे उसके जैसे थे, सतयुग में भी आए तो हम साफ सुथरे ही थे क्योंकि सोल कॉन्शियस नेचुरल थी। लेकिन जहां सत्य को भूले तौपर में देह समझा, विकर्मों का बोझा चढ़ा। तो अब बाप समान बनने का मतलब क्या कि उसके जैसे तो थे हम, अब उससे अलग कैसे हुए, तो इस विकर्मों के कारण हुए, वो चढ़ा हुआ है, वो मैल चढ़ी हुई है। तो जब उसके पास जाकर बैठेंगे, अब उससे आने वाला उसके शक्ति का, उसके किरणों का, उसके प्रकंपन का प्रवाह जो मुझ आत्मा पर पड़ेगा, वो अपने आप क्या करेगा, मेरे विकर्मों की गठरी को साफ कर देगा। पर उसके लिए चाहिए शांतता, स्थिरता। हम कई बार सोचते बहुत बहुत सुंदर संकल्प करेंगे ना तो बहुत सुंदर योग लगेगा, पर योग की शर्त है शांति। और पहले ही कहा कि सत्य से रिलेटेड संकल्प करेंगे तो शांति आएंगी, और शांति आएंगी तो अब मन संकल्प करने का भी नहीं करेगा, मन संकल्प करने को भी तैयार नहीं होने वाला है फिर। और उस शांति में, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, बिंदु बनकर, बिंदु बाप के पास परमधाम में आकर बैठ जाओ। कभी बोला है आके बातें करो, बातें करने की बात उसको बोलनी होती है ना, तो चार धाम बोलता है। चार धाम में आके खूब बातें करो, लेकिन जब भी परम धाम की बात आई है मुरली में, अव्यक्त मुरली में, बाबा कहते हैं बस मेरे पास आकर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो वो हमारे ऊपर काम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। एक डॉक्टर को भी ऑपरेशन करना होता है, जिस एरिया का ऑपरेशन करना है उसको शांत, क्योंकि पेशेंट को काट पीट करेंगे तो उसको दर्द होगा, तो उछल कूद करेगा तो उसका तो कुछ और हो जाएगा, काटने गया था कुछ और कट गया कुछ और। हाँ, तो मरीज को ठीक करने गए थे लेकिन मरीज और ज्यादा मरीज हो जाएगा, इसलिए वो शांत रहे, वो इसका स्थान एनेस्थीसिया देते हैं। तब कहीं डॉक्टर जाके जो करना चाह रहा है कर सकता है, उसके बाद भले आओ ना होश में आके फिर, क्योंकि टेम्पररी रहता है ना वो, तो जितनी देर तक उसे ऑपरेशन करना है उतनी देर तक उसको शांत, बाद में तो वापस होश में लाते हैं ना। तो परमधाम वाली याद कि जहां मन बुद्धि दिल शरीर तो है ही, वो भी शांत रहे, इतना शांत मुझे जाके उसके पास बैठना है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है, संगीतज्ञों का भी अनुभव है कि एक कमरा हो, शांत हो, खाली हो, एक कोने में एक वीणा, दूसरे कोने में दूसरी वीणा। अब एक एक्सपर्ट संगीतज्ञ आकर एक वीणा की तारों को छेड़े, सरगम निकाले, स्वर गूंजेगा, प्रकंपन फैलेंगे, और वो प्रकंपन फैलते फैलते दूसरे कोने में रखी हुई वीणा को जाके स्पर्श करेंगे, और उस स्पर्श मात्र से उन तारों से भी सरगम छिड़ेगा और वही वाला स्वर निकलेगा। ये संगीतज्ञों का अनुभव सत्य घटना है, दोनों की फ्रीक्वेंसी। और कब लेकिन घटना घटी? शांत, शांत में घटना घटी है। और इसके साथ साथ एक दूसरा मैं साइंटिफिक लॉजिक आपको सपोर्ट दे दूं। कहते हैं एक राजा था, उसका किला था, मतलब बहुत पुरानी बात, पहले होते थे राजा, तो आज से लगभग 150-200 साल पहले की सत्य घटना है। एक वैज्ञानिक उसके घर पे मेहमान बना एक दो रात के लिए, तो राजा ने उसको जिस कमरे में ठहराया, बेशक किला माना ऊंचाई पे शांत तो था ही, लेकिन उस कमरे में दो घड़ियां लगी हुई थी दीवार पर, दोनों बड़ी थी पर एक छोटी अंतर में, दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो एक छोटी एक बड़ी। और ये बंदा जो ठहरा है उस कमरे में, उसका ध्यान जाता है उन घड़ियों पर, और उसको आश्चर्य होता है ये देखकर कि दोनों के टाइमिंग्स एक्सेक्ट डिटो सेम, मिनट काटा देखो, सेकेंड काटा देखो, घंटे का काटा देखो, और पुरानी बात है माना पेंडुलम वाली घड़ियां, पेंडुलम की पोजीशन देखो, डिटो। इसको आश्चर्य होता है ऐसे कैसे, इतना भी रिंचक मात्र भी अंतर नहीं। अब वैज्ञानिक तो था, दिमाग लॉजिक तो चला रहा था, उसने सोचा मैं इसकी स्टडी करूंगा, ऐसे कैसे, इसके पीछे क्या काम कर रहा है, कोई संयोग वश ऐसा हुआ है या कोई इसके पीछे साइंस काम कर रहा है। तो स्टडी करने के लिए उसने क्या किया, रात में एक घड़ी को बंद कर डाला, और सुबह जब उठा तो डेफिनेटली दोनों के टाइम में अंतर पड़ गया। अब जब अंतर पड़ गया तो जिसको बंद किया था अब खुद होकर चालू किया और टाइम सेट किया, लेकिन जानबूझकर 5-10 मिनट का अंतर रखा। क्योंकि उसको स्टडी करनी थी ना, और उसने देखा 24 घंटे होते होते ये जो टाइम डिफरेंस था वो खत्म हो गया और दोनों घड़ियां डिटो सेम एकदम जैसा का वैसा समय दिखा रही है। इसको लगा कि ये संयोग नहीं है, ये जरूर कोई इसके पीछे साइंस काम कर रही है। कौन सी साइंस काम कर रही होगी, तो उसकी भी स्टडी करने लग गया। कहते आया था एक दो रात के लिए, लेकिन साइंटिफिक माइंड होता है तो फिर जिज्ञासा जब तक शांत न हो वो लग जाता है। कहते तब तक रहा जब तक कि उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, स्टडी की। और क्या स्टडी की, तो रात के एकांत में बड़ी घड़ी के पास जाके कान लगाता था और देखा कि उसकी टिक 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 से जो प्रकंपन आ रहे हैं वो दीवार से होते हुए दूसरी घड़ी को के पास जाके उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। और ये सिलसिला 24 घंटे तक चलते चलते उसको अपने बराबरी पर लेकर आता है। और इसी चीज की स्टडी उस समय तो उसने यहीं पर छोड़ दिया और उसको नाम दिया हारमनी, सामंजस्यता जिसको कहते हैं, तारतम्यता जिसको कहते हैं। लेकिन फिर कहते आज से 50-75 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक ने, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है और एक साइकोथेरेपिस्ट होता है, साइकोथेरेपिस्ट कार्ल गुस्ताव जुंग, उसने प्रॉपर पूरा साइंटिफिक वे में जो लिखत आदि डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, नहीं वो थ्योरम बनाना होता है, हाइपोथेसिस आदि लिखना होता है साइंटिफिक भाषा में, वो सब करके उसने प्रूफ किया, नाम दिया लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। आप गूगल में डालेंगे आपको दिखाई पड़ेगा। और उसका कंक्लूजन क्या था कि लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी अर्थात समकालिकता का नियम, ये सिर्फ वीणा के केस में लागू नहीं होता है, ये सिर्फ घड़ियों के केस में लागू नहीं होता है, लेकिन जीवन के हर डायमेंशन पर लागू होता है, हर आयाम पर लागू होता है। और जब हमने इस बात को पढ़ा तुरंत हमें बाबा की बात याद आई, शायद बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास परम धाम में आकर बैठ जाओ, कि हमें कुछ नहीं करना है, करना किसने, बड़ी घड़ी ने किया ना छोटी घड़ी को। अब बड़ी घड़ी यहां पे साइज की बात नहीं, यहां पे वो परम आत्मा है तो बड़ा है ना, और हम आत्मा है तो हमारे पुरुषार्थ से हम इतनी प्रगति नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। अपने पुरुषार्थ से हम इतनी प्रगति नहीं कर सकते, इतना विकर्मों का कचरा साफ नहीं कर सकते। हमारा काम है समर्पण, बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास समर्पित। तुमको जो करना है करो, मैं आपके आगे समर्पित। और उस समर्पण में न मुझे मन चलाना है, न बुद्धि चलाना है, न दिल चला, सानिध्य में तो आ गई हूं ना मैं, उसके सानिध्य में तो आ गई हूं ना। अब वो करेगा ना, बच्चा एक बार गोद में आ जाता है वो माँ का काम है उसको सहलाना, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, और उसके द्वारा उसका अंतःकरण उस प्यार को स्वीकार करता जाता है, होता है नहीं होता है। बस मैं जाके बाबा के पास बैठ जाऊं। शांत का मतलब यही है कि जो बाबा ने तीन बिंदु कहे हैं ना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा पिता बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो शांत रहना माना ही ड्रामा को बिंदु है। समझ में आ रही बात? अगर कुछ चल रहा है माना ड्रामा का कुछ ना कुछ याद कर रहे हम, या तो हम उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, मन को चला रही माना उपकरण है ना, जड़ है ना, वो तो करंट मिल रही है उसको, इसलिए वो चैतन्य बना है। तो उपकरणों का भी यूज नहीं करना है मुझे, इतना शांत जाके बैठ जाना है। लेकिन उतनी शांति के लिए फिर व्यवहार में जो बाबा ने कहा धर्म और कर्म बाप समान हो, तो व्यवहार जगत में जब जब हम कोई कर्म करें चेक कर लें धर्म क्या कह रहा है। ये कर्म जो मैं कर रही हूं आत्मा का जो स्वधर्म है प्रेम का शांति का, उसके आधार पे कर रही हूं या भीतर में कोई ईर्ष्या भाव रख के कर रही हूं, कोई राग देश रख कर कर रही हूं, कोई शत्रुता रख के कर रही हूं, कोई स्वार्थ भाव रख के कर रही हूं, फिर ये तो फिर आत्मा का धर्म नहीं है, ये कोई आत्मा का धर्म नहीं है। आलस्य में अलबेलेपन में कर रही हूं, ऐसे ही बिना दिल से कर रही हूं, फिर ये आत्मा का स्वधर्म नहीं है ना। तो कर्म करते समय चेकिंग, तब फिर ये शांत रहना इजी हो जाएगा। और अगर ये शांत रहते हैं और उसके पास जाके बैठ जाएंगे, अब वो सहलाएगा अपनी किरणों से, वो सहलाएगा अपनी शक्ति से, वो सहलाएगा अपने प्रकंपनों से, और उस सहलाने में ही वो मेरी क्या कर देगा, माँ ऐसे ऐसे करते बाल भी बना लेती, कुछ गंदा होता है उसको भी साफ कर लेती है, करती नहीं करती है, वो मेरी सफाई कर देगा और अपने जैसा बना देगा। लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी वहां पे भी काम करेगा। और इसको कहेंगे यथार्थ साधना। तो 5 से 6 का टाइम है आज भी आपके लिए, हाँ? तो उसमें क्या करेंगे, ऐसा ही पावरफुल योग करेंगे। और उसके लिए ही पहले बताया कि कर्म को शुद्ध करना है, किस आधार से कर्म करते समय धर्म था या नहीं था। लेकिन ऐसा बहुत कुछ हुआ पड़ा है और उसको पहले कहा कि स्वीकार कर लो बाबा के सामने, पत्र लिखने की बात तो इसीलिए थी ना। तो स्वीकार कर लेने के बाद हल्के हो जाते हैं ना, और हल्के होकर फिर उसके लिए परमधाम में जाके शांत होकर बैठना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्यों चाहिए? नहीं है ना, नहीं है। हाँ हाँ, सभी उपकरणों से परे हो जाए ना हम, तो कमेंट्री जैसे देखो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो ABCD सीखनी पड़ती है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं प्राइमरी पार करके भी अभी भी सिर्फ ABCD पढ़ूंगी, तो कमेंट्री गलत कुछ भी नहीं है, प्राइमरी स्टेज थी। अब प्राइमरी से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, समझ में आ रही बात? तो कमेंट्री वाले तो पहले कहा ना, भीतर भीतर कमेंट्री करो कि मैंने ये कर्म किए, धर्म के अनुकूल नहीं था, और बाबा को बताना कि बाबा ये मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है जो धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी मेरे से हो गया है। और बाबा कई बार कह रहे हैं सत्य बता दो आधा माफ, और आधा माफ का मतलब इतना ही है हल्कापन, क्योंकि निकाल दिया ना, यहां पे बहुत तूफान मच गया था, कुछ ऐसा खाया था तूफान, लेकिन जैसे ही निकल गया ठीक लग रहा है, ऐसे ही मैंने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बाबा को स्वीकार करा दिया, बाबा ये मेरे से हुआ है। तो बाबा कहता कोई बात नहीं बेटा, अगली बार नहीं करना, ये जरूर ध्यान में रखना है। और हल्के हो गए और उसके पास जाके बैठ गए, वो सहलाएगा, वो प्रकंपन भेजेगा, शक्तिशाली याद भी होगी, सर्व संबंध वाली भी याद हो जाएगी। क्यों? जैसे बनते ना सफेद रंग में सब संबंध समाये हुए हैं, उसके सानिध्य में बैठ गई ना, एक बात दूसरा ना कोई है ही नहीं ना, तो फिर ऐसे थोड़ी किसी और के साथ मेरा संबंध है, तो सर्व संबंध हो गए ना उस एक के साथ कि नहीं हो गए। तभी का शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, उसको कहते हैं यथार्थ साधना। तो आज शाम को 5 से 6 अटेंशन के साथ यथार्थ साधना करें, ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभकामना। ओम शांति।